हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 16 17 एंड 18। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णतदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैवमे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। ब्रजे वसन्तं नवनीत चोरं गोपांगनाना सदुकूल चोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि
श्री कृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 19 जिसका शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। यहां तक हमने पढ़ा कि महाराजा परीक्षित को जब पता चला कि शमिक मुनि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है और वो 7 दिन के उपरांत उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो अपना सब कुछ त्याग कर राज अपने पुत्रों को देकर गंगा के तट पर आकर विराजमान हो गए। और जैसे ही वो वहां पर आए वहां पर अनेकानेक ऋषिगण सब उपस्थित होने लगे और उन सबको राजा ने प्रणाम किया और पुनः उनको सुख से बिठा कर पुनः प्रणाम किया और उनसे बोले उन्होंने कहा राजोवाच अहो वयम धन्यतामा नृपाणां महत्तमानुग्रहणी शीला। आप सबने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है मैं परम धन्य हो गया हूँ। राज्ञां कुलं ब्रह्मण पाद शोचा दूरात विशिष्टं बत गय कर्म। मुझसे राजा से तो ऋषिगण जो है वो बहुत दूर रहना पसंद करते हैं उनके निकट नहीं आते। मुझ पर आप सबकी अत्यंत कृपा है जिसके कारण अंतिम समय में मुझे आप सबके दर्शन हुए हैं। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्व भीक्षं निर्वेदमूलं द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुचेतत। कि ये जो ब्राह्मण का शाप मुझे मिला है मुझे उससे छूटना नहीं है ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो ये तो भगवान की कृपा हो गई ब्राह्मण के रूप में जिसके कारण में व्यासक्त चित्त से गृहेश्व भीक्षण सदैव घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ लेकिन आज यत्र प्रसक्तो भयमाशु फौरन ही उनके शाप के कारण मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है और मैं संसार की आसक्ति को क्षण में त्याग करके यहाँ पर आ गया हूँ। इसलिए तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमीश मैं आप सबकी शरण में आया हूँ और साथ साथ में देवी गंगा जी की शरण में आया हूँ। दुजो प्रसिष्टो कुहकस्तक्ष को अभी भले कैसे भी मेरी मृत्यु हो जाए चाहे तक्षक सर्प आके मुझे डस दे या कैसे भी ब्राह्मण के चमत्कार से मुझे किसी तरह से भी मृत्यु हो जाए मृत्यु से भय नहीं है बस एक कृपा कीजिए। दशत्वलं गायत विष्णु गाथा आप एक मेरी इच्छा पूरी कीजिए कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन कीजिए। इतना कहने के बाद राजा परीक्षित राजा कहते हैं, श्लोक नंबर 16, कृपया मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदा श्रयीषु महत्सुयाम्याम् उपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नामो द्विजेभ्य पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदा श्रयेषु महत्सुयाम्याम् उपयामि सृष्टम् मैत्रस्तु सर्वत्र नामो द्विजेभ्य पुनश्च पुनश्च यानी दोबारा फिर से भूयाद भूयाद यानी ऐसा हो भगवत्यनन्ते भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत शक्तिमान है ऐसे भगवान में रति रति उत्पन्न हो यानी कि कभी ऐसा हो जाए कि पुनश्च भूयात् दोबारा मुझे इस भौतिक जगत में आना पड़े भगवत अनंत अनंते भगवान की शक्ति अनंत है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रति उनके अंदर लगी रहे। आप मुझे भगवान की कथाओं का श्रवण कराते रहो और जैसे जैसे मैं श्रवण करता रहूंगा तो भगवान के अंदर मेरी अनुरक्ति होगी और प्रसंगश्च तदाश्रयेषु यानी जो भगवान के भक्त हैं उनकी संगति में करूंगा महत्सु याम उपयामि सृष्टिम। तो इस तरह से महत्सु यानी इस भौतिक जगत में याम जो जो उपयामि यानी लूंगा या जब जब यहाँ पर आऊंगा सृष्टिम जन्म लूंगा तो मैं चाहता हूँ मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य मैत्रियस्तु में मित्रता मुझे प्राप्त हो सर्वत्र जितने भी सभी जगहों पर नमः द्विजेभ्य कि मुझे उनके भक्तों की मित्रता प्राप्त हो मुझे भगवान के भक्तों का संग प्रसंगश्च तदाश्रय उनके भक्तों का संग प्राप्त हो भगवान के अंदर मेरी रति लगी रहे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मरने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है और मरने के बाद पुनः जन्म लेना भी आवश्यक है। यानी जन्म तो होगा हर सूरत में होगा ये नहीं पता कि किसी आध्यात्मिक जगत में होगा स्वर्ग लोक में होगा नरक में होगा या भौतिक जगत में होगा ये नहीं पता। अभी वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने नेक्स्ट बर्थ को अच्छी जगह पर होने के लिए कार्य करे। यानी कि इस हम लोग क्या करते हैं इसी जन्म में हम लोगों को अच्छा अच्छा प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इस जन्म में अच्छा घर हो अच्छी गाड़ी हो अच्छा लाइफस्टाइल हो ये सब हम जो भी आज तक ये भौतिक जगत में आज तक हमने जितनी भी एजुकेशन प्राप्त की है वो हमें सिर्फ इसी भौतिक जगत में किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं उसके विषय में बताती है। परंतु यहाँ पर महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि इस जन्म में भले ही मुझे राज्य मिला था लेकिन मुझसे अपराध हो गया जिसके कारण से अभी मैं मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ लेकिन मैं इस जन्म में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पुनः जब मेरा जन्म होगा मृत्यु के उपरांत जब मेरा जन्म होगा तो मुझे क्या चाहिए भूयात् भगवत्यनन्त रति अनंत शक्तिमान भगवान के अंदर रति चाहिए। मैं चाहता हूँ जब जन्म लूँ तो प्रसंगश्च तदाश्रयो उनके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो और महोत्सु याम्याम उपयामि सृष्टम ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ जन्म मिलना चाहिए ऐसे माता पिता होने चाहिए जैसे भी जन्म मिले परंतु ये दो काम होने चाहिए। भगवान के भक्तों का संग होना चाहिए और भगवान के चरणों में रति। यदि दो ये चीजें मुझे प्राप्त हो जाती हैं, फिर सारे अमंगल जो हैं, वो मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे, सारे अभद्र जो हैं, वो आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे, सारे कष्ट जो हैं, वो सुखों में बदल जाएंगे। अगर भगवान के चरणों के अंदर प्रीति और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो और कुछ प्राप्त नहीं करना मुझे। इसीलिए आप सब आशीर्वाद दीजिए और भगवान की कथाएं कहिए ताकि मैं सुनते सुनते अपने मन को उन चरण हरि चरणों के अंदर स्थापित कर सकूं और ऐसे जब मेरी मृत्यु होगी तो अवश्य मेरा कल्याण होगा। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्रीय भाव रहे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया कि भगवत भक्त ही एकमात्र पूर्ण जीव है, यानी कि एक भगवान की भक्ति जो करता है उसके पास कोई कमी नहीं रह जाती, फिर वो उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान की भक्ति उसको प्राप्त है, भक्तों का संग उसको प्राप्त है, फिर उसको किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों, क्योंकि उसका लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। फिर चाहे कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करता है, वो किसी के साथ शत्रुता नहीं करता। जैसे महाराजा युधिष्ठिर को ऐसा कहा जाता था कि उसका कोई भी शत्रु नहीं है, भले ही दुर्योधन और सब उनको शत्रु मानते थे, मगर वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता। ये एक ख्वाहिश होती है भक्तों की और यही ख्वाहिश को यहाँ पर महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि प्रसंगश्च तदा श्रेयेषु। प्रसंग से मैं संगति चाहता हूँ, मैं उनका साथ चाहता हूँ जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि अब भगवान के भक्तों की एक ही इच्छा होती है कि वो भगवान के भक्तों की संगति करना चाहते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसा ही हम संगति चाहेंगे और जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे ही संगति चाहेंगे। तो भगवान की भक्ति यदि कोई चाहता है, भगवान के हृदय के अपने हृदय के अंदर यदि भगवान के लिए प्रेम चाहता है तो उसे भगवान के भक्तों का संग करना पड़ता है। तो इसीलिए भक्तों की हमेशा यही इच्छा होती है कि मुझे संग प्राप्त हो भक्तों का। इसी चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि जो वैष्णव होते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, वो कैसा होना चाहिए, वैष्णव के अंदर क्या गुण होना चाहिए। तब महाप्रभु ने उसी समय बगैर विलंब के उत्तर दिया, असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो असत्य संग यानी अभक्तों का संग त्याग करता है वही वैष्णव है। तो वैष्णव की हमेशा ये इच्छा होती है अभक्तों का संग नहीं करें और भक्तों का संग प्राप्त हो। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्तों की संगति में भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहते, यद्यपि उनसे शत्रुता नहीं होती है, वह भगवत भक्तों की संगति चाहता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री भाव होता है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के जनक भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। जैसे महाराज परीक्षित ने कहा मैत्रेयस्तु सर्वत्र, मैं नहीं चाहता मैं किसी से मेरी शत्रुता हो, मैं चाहता हूँ सबका मित्र बनकर रहूं। ये भक्तों के अंदर गुण होना चाहिए। भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, किसी से उसकी कोई शत्रुता नहीं होती है। वो चाहता है कि सब जीव भगवान से प्रेम करें, क्योंकि वो जानता है कि सब भगवान से संबंधित हैं, इसी लिए क्योंकि वो सब भगवान से संबंधित हैं, इसलिए वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। वह अपने पिता के निकृष्ट पुत्र को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराता है, भक्त हमेशा प्रचार करता है और सब जीवों को बताता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो तो उनकी सेवा करो। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन की प्रार्थना की है वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। वो उनको तो जाना था, वो तो अवश्य जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा है महत्सुयाम्याम उपयामिस, बलि मुझे बार बार जन्म प्राप्त हो। मुक्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन यदि जन्म प्राप्त हो तो क्या होना चाहिए? ये भगवत अनंते रति, अनंत शक्तिमान भगवान के अंदर रति और प्रसंगश्च तदाश्रय और उनके भक्तों का संग, तो यही वास्तविक जीवन है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चित रूप से वो भगवत धाम तो जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्हें जिस तरह से के जीवन के लिए प्रार्थना की है वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी भी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ नहीं चाहते, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वे भगवान के भक्त हों। महाराज परीक्षित ये नहीं कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, वहां पर देवताओं का संग प्राप्त हो, ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा का संग प्राप्त करूं, नहीं। वे कहते हैं कि मुझे भगवत भक्तों का संग चाहिए, प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, उस भगवान के भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, फिर चाहे मुझे मुक्ति भी प्राप्त न हो, मुझे बारंबार जन्म लेना पड़े, लेकिन कृष्ण के चरणों में प्रीति और भगवान के भक्तों का संग, ये दो वस्तु मुझसे कभी भी ना छिन नहीं पाइए। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भगवान की कथाओं का रसपान कराइए ताकि मेरी रति भगवान के चरणों में लगे। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं श्लोक नंबर 17 में, इति स्मराचार यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कोशेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणकूल अस्ति समुद्रपत्न्य स्वसुतन्यस्तभार इति स्मराचार यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कोशेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणकूल अस्ति समुद्रपत्न्य स्वसुतन्यस्तभार इति स्मराजा। इति माना इस प्रकार, स्म यानी उस टाइम पर भूतकाल के लिए प्रयुक्त किया गया राजा। इस प्रकार राजा ने देवसाय युक्त, देवसाय मतलब धीरज में रहे, कोई वो विचलित नहीं हो रहे थे, और साथ में उन्होंने क्या किया, प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा, प्राचीन मूलेषु यानी पूर्वी, मूलेषु यानी जो मूल है ना जड़, उस जड़ के साथ कुश, एक कुश होती है जो घास के एक टाइप होती है, उसको यदि ऊपर से सिर्फ काटते हैं तब नहीं, जब उसका जो मूल है ना, जो जड़ है उसके साथ यदि काटते हैं तो बहुत पवित्र मानी जाती है। इसे यहाँ पर बताया प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा, धीरा मतलब आत्मसंयमी राजा ने क्या किया, उस कुश को जड़ के साथ निकाला और उसका आसन बनाया। उसके बाद उदंड मुखो यानी उत्तर की तरफ उत्तराभिमुख होकर दक्षिण कूल आस्ते, दक्षिणी किनारे पर जो गंगा जी का दक्षिणी किनारा है उसके ऊपर आकर स्थित हो गया, और समुद्रपत्न्य ससुतन्य समुद्रपत्न्य समुद्र पत्नियां का मतलब होता है गंगा मैया की। गंगा मैया के दक्षिणी किनारे पर अपना मुख उदंड मुख हो उत्तर के मुख पर कर लिया और स्वसुतन्यस्त भारा यानी अन्य जितना भी उनका प्रशासक का भार था राज्य का वो सारा स्वसुतन अपने पुत्रों को दे दिया और स्वयं सारे भार से विमुक्त होकर गंगा के किनारे पर दक्षिणी किनारे पर आकर उत्तरमुखी होकर विराजमान होकर धीरज के साथ। अनुवाद पूर्ण आत्मसंयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल है। महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। इस तरह समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। श्लोक नंबर 18। जब महाराजा परीक्षित ने इस तरह का निर्णय सुनाया अपना तो फिर सारे देवी देवता आकाश पर आ गए और महाराजा परीक्षित की इस निर्णय की प्रशंसा करने लगे। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे देवी देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्चनेदु एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे देवी देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दुन्दुभय शनेदु एवं एवं मतलब इस प्रकार एवं च तस्मिन् तस्मिन् यानी उसमें नरदेव देवे नरदेव यानी राजा में प्रायोपविष्टे आमरण उपवास जब राजा ने इस प्रकार से आमरण उपवास का निश्चय किया और गंगा के शरण में समस्त ऋषियों की शरण में आकर बैठ गए देवी देव संगा आकाश में देवता संगा यानी सब एक साथ जितने भी देवी देवता हैं वो सारे एक साथ आकाश में आए और प्रशस्य यानी राजा की प्रशंसा करने लगे। भूमौ इस पृथ्वी पर भी आए व्यकिरण प्रसून आए व्यकिरण मतलब वो बरसाने लगे रोष प्रसून यानी पुष्पों की वर्षा करने लगे। वो बहुत प्रसन्न थे मुदा मुहुर दुंदु भयश्चनेदु और दुंदुबियां और जो दैवी ढोल होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर मृदंग होता है उसी तरह से देवता लोग दुंदुबियां बजाते हैं तो बजाने लगे और बहुत बहुत फूलों की वर्षा करने लगे और साधु साधु कहकर राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। अनुवाद इस प्रकार महाराजा परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की बड़ाई करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगारे बजाने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराजा परीक्षित के काल में भी अंतर्गृह यातायात तथा था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्त हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश के उच्च लोकों तक फैल गई जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की उपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देवताओं को भी जब पता चलता है ना कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। देवताओं यहाँ पर महाराज परीक्षित ने कोई भी देवी देवताओं की पूजा करने की यहाँ मतलब ठानी नहीं है मन में, ये नहीं सोचा मैं यहाँ पर बैठ के कोई देवी देवताओं का यज्ञ करूंगा या कुछ। उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो भगवान भूयात भगवत्यनंते, भगवान जो अनंत शक्ति के स्वामी हैं उनकी भक्ति करने के लिए यहाँ पर आके बैठे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मैं मर के पुनः इस संसार में आऊं तो भी मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के चरणों में रति प्राप्त हो, प्रसंग सदाश्रय और उनके भक्तों के भक्तों का संग प्राप्त हो। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्यों से बहुत अधिक समृद्धशाली होते हैं, मनुष्यों से ज्यादा उनके पास बुद्धि होती है, ज्यादा धन होता है, ज्यादा वैभव होता है, ज्यादा ऐश्वर्य होता है, लेकिन फिर भी देवता सदा भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते उनका आदर करते, भगवान की भक्ति करने के लिए महाराजा परीक्षित उठे और सारे देवी देवता आकाश में खड़े होकर धुंधुभियां बजा रहे, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। स्वर्ग लोक में एक भी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान से पृथक अपने आप को मानता। वो जानता है कि भले ही मैं देवता हूँ लेकिन भगवान के ही आश्रय होते हैं सब, कोई भी नास्तिक नहीं होता। इस तरह पृथ्वी के किसी भी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगारे बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भी भक्त को भगवत धाम जाते देख कर हर्षित होता है, वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करते हैं और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच में पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला होती है। यहाँ पर पृथ्वी पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की सारी शक्तियाँ मिलकर हमारी सहायता कर रही होती हैं। जो देवता होते हैं वो अपनी दैवी शक्ति के द्वारा हमें अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करते हैं। वो जरूरी नहीं हमें दिखने में अनुकूल हो लेकिन वो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर रहा होता है। वो वाला वातावरण ऐसा क्रिएट हो जाता है। उसके साथ साथ भगवान जो है उनकी अंतरंग शक्ति हमारी सहायता कर रही होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं और जब भक्त प्रयास कर रहे होते हैं तो भगवान उनके प्रयासों को देखकर उनके ऊपर कृपा करते हैं और कृपा बढ़ती है, देवी देवता सहायत होते हैं। तो इस तरह भक्त जो है वो बहुत जितना सिंसियर होता है, जितना सीरियस होता है उतनी ही अधिक उसकी उसको सहायता मिल रही होती है और सबका सहयोग प्राप्त होने के कारण जो है वो भक्त अति शीघ्र अपने लक्ष्य को पहुंचता है। तो यहाँ पर जैसे ही महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, सब अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दिया और उन सब ऋषियों को बता दिया कि मुझे इस मृत्यु से नहीं बचना है, मुझे इस शाप से नहीं बचना है, बस आप लोग मुझ पर इतनी कृपा करो कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे सामने भगवान की कथाओं का वर्णन करो, मेरी रति भगवान के चरणों में लगे, फिर चाहे मैं दोबारा जन्म भी लूं तो भी मुझे भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो, मेरी रति जो है वो भगवान के चरणों में एकदम टिक जाए, बस मुझे यही इच्छा है। मुझे अभी किसी स्वर्ग लोक में जाने की या ब्रह्म लोक में जाने की इच्छा नहीं है, बस मेरी एक ही इच्छा है कि रति प्रसंगश्च सदाश्रयेषु महत्सु याम उपयामि सृष्टिम्। जब जब जन्म हो तो भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में रति प्राप्त हो। इतना कहकर जब वो कुश का आसन, जड़ से कुश का आसन बिछा कर बैठ गए और उत्तर की तरफ मुख कर दिया, गंगा के किनारे दक्षिण किनारे पर बैठे, तो फिर सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए, वो वहां पर आकर उनकी प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। अब आगे देखते हैं कि उसके बाद किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है और उनके ऊपर कृपा होती है, भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।